प्रातः भागवत कक्ष में आप सभी को कृष्ण बलरंका मंदिर का तरफ से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दो टॉपिक है, एक है बक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव, दूसरा है हेरा पंचमी। लेकिन पहले मैं बक्रेश्वर पंडित के बारे में थोड़ा से संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि इसका ऊपर ज़्यादा कोई भी शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है, बहुत सारा शास्त्र भी ढूंढा गया है। चैतन्य पार्षद का जो किताब है वो भी है, और दूसरा है ब्रज के संत, वो किताब भी है। सारा किताब में देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं मिला नहीं इतना। फिर बक्रेश्वर पंडित जो थे वो कृष्ण के चतुर्व्यूह के श्री अनिरुद्ध ही थे कृष्ण लीला में, और चैतन्य महाप्रभु का लीला में बक्रेश्वर पंडित अपने प्रकाश विशेष से इनमें शशि रेखा का प्रवेश भी था। कहते हैं बुह्यस्तु तर्ज्य अनुरुद्ध यह सह बक्रेश्वर पंडित कृष्णावेश जन नृत्यन प्रभो सुखम जी जनत सो प्रकाश विवेदन शशि रेखा आत्मा विशद। श्री बक्रेश्वर पंडित जो है श्री महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, मतलब पर्सनल सेवक, और ये मुख्य ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तनिया थे, कीर्तन प्रेमी। एक बार उन्होंने 72 घंटा मतलब तीन दिन तक निरंतर एक ही भाव में नृत्य किए, बैठे नहीं, जिसी प्रकार नारद जी कभी बैठते नहीं उसी प्रकार 3 दिन तक नाच रहा है, हरे कृष्ण पूरा चल रहा है। तो जब ये नृत्य कर रहे हैं तो महाप्रभु श्री स्वयं गान करते थे, उनका नृत्य को देखते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु गान कर रहे हैं। और एक बार नृत्य करते करते बक्रेश्वर पंडित महाप्रभु का चरण पे गिर पड़े और बोलने लगा, प्रभु हे चंद्रवदन मुझे 10,000 गंधर्व मंगा कर दीजिए। बक्रेश्वर पंडित बोल रहा है 10,000 गंधर्व बुला के मेरे को दीजिए, ये सब गान करेंगे और मैं अकेला नाच करूँगा, डांस करूँगा, तब जाके मेरा तृप्ति होगा, नहीं तो तृप्ति नहीं होगा। सहस्र गायकना मह्य देहि तुम करुणामय इति चैतन्य पादे यह उवाच मधुरम वचः। श्री बक्रेश्वर के नृत्य में श्री महाप्रभु इतना आनंद उल्लास प्राप्त करते हैं और उनमें प्रेम वितरण की एक अभूतपूर्ण उत्कंठा जाग उठी। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बक्रेश्वर तुम मेरी एक ही सखा हो, वरन मेरे एक पंख हो, यदि मुझे तुम्हारे समान और दूसरा और एक ही पंख मिल जाता है तब मैं आकाश में उड़ के ये हरिनाम का प्रचार करूंगा और सात लोक तक चल के भगवान का नाम का प्रेम प्रदान करते रहूंगा। श्रीमन महाप्रभु ये बक्रेश्वर पंडित के साथ कृष्ण नाम गान नृत्य में ऐसा अतिशय सुख अनुभव करते हैं कि उन्हें देवताओं भी दीन दशा पर रोना आता है और सोचते हैं बक्रेश्वर जैसे प्रेमी भक्त के साथ ऊपर लोगों को भी नाम प्रेम रस का आस्वादन कराएं। इस प्रकार नाम संकीर्तन में अद्भुत रसोल्लास अनुभव करते हुए महाप्रभु इनके साथ साथ इनके कृपा भी किए, और भगवती देवानंद पंडित ने महाप्रभु की कृपा प्राप्त की और श्रीमद् भागवत की भक्ति पर का व्याख्या में महाप्रभु से सुनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बरहा पुराण में कहा जाता है, सिधीर भवती बा नेति संशय अच्युत सेविनाम निहि संशयस्तु तद्भक्त परिचय रितात्मनाम। जो भक्त की सेवा करके केवल अच्युत भगवान की सेवा करते हैं इनको अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी होगा फिर भी संदेह हो सकता है, किंतु जिनका चित भगवत भक्तों की सेवा में लगा हुआ है उनकी अभीष्ट या फल प्राप्ति में कुछ भी संशय या संदेह नहीं हो सकता है। बक्रेश्वर पंडित की तो इतना ही ये शास्त्र में मिला है और कुछ मिला नहीं दूसरा ये में। तब हम आज चर्चा करते हैं अभी हेरा पंचमी, कितने भक्त लोग हेरा पंचमी के बारे में जानते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, किसी को भी? वाह, थोड़ा बहुत। तो पहले तो बहुत बार चर्चा किया हूँ जगन्नाथ कथा में, कितने बार भी चर्चा किया हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको बताऊँगा, पहले से स्नान पूर्णिमा से चालू करूँगा, क्योंकि हेरा पंचमी को समझने के लिए पहले से उसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। हेरा पंचमी का अर्थ होता है, हेरा का अर्थ होता है ढूंढना। स्वयं जगन्नाथ को ढूंढने के लिए जाती है कौन? कौन जाते हैं? राधा रानी नहीं, कौन जाती है? लक्ष्मी जी, स्वयं लक्ष्मी जी। आज बहुत गुस्सा में है आज, इसलिए माताओं लोग ज़्यादा गुस्सा इधर अभी नहीं होने का। मैं अभी कुछ ना कुछ बोलूँगा, लेकिन माताओं साइड में कभी गुस्सा नहीं होना मेरा ऊपर, जो शास्त्र में बना नहीं मैं बताऊँगा बस। तब स्नान पूर्णिमा में भगवान अपना रत्न मंडप को छोड़ के स्नान मंडप जाते हैं। स्नान मंडप में भगवान विराजमान होते हैं एक दिन, सुबह से लेके रात को 12-1 बजे तक स्नान मंडप में विराजमान होते हैं। और स्नान मंडप पे सुबह का जगन्नाथ का सुबह का कार्यक्रम होने का नाते, अवकाश वेश सब कुछ होने का नाते, दांतुन से लेकर स्नान करते हैं, सुबह जो कार्यक्रम हो जाता है इसका बाद जगन्नाथ स्नान करने के लिए जाते हैं। स्नान मंडप में जब विराजमान होते हैं तब स्नान कुआं, एक ही कुआं है जिसी कुआं को साल में एक बार, साल में एक दिन वो कुआं को खोला जाता है, नहीं तो 12 महीना तक वो कुआं बंद रहता है। वो कुआं का नाम है स्वर्णकूप, वो कुआं का नाम है सरस्वती कुआं, क्योंकि तीन ही कुआं है जगन्नाथपुरी मंदिर का अंदर। एक ही है रोसोशाला में जिसका नाम है गंगा, और एक ही है बीमला मंदिर का सामने जिसका नाम है जमुना, जिसी जमुना का जो जल है, जमुना का जल मतलब वो कुआं का जल से भगवान को स्नान किया जाता है डेली, जो कि भगवान का अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह क्या है? जगन्नाथ का अर्चा विग्रह का नाम क्या है? राधा मदन मोहन। क्या है? राधा मदन मोहन। इनको स्नान किया जाता है उसी जल में। और एक ही कुआं है जो कुआं कोयली वैकुंठपुर उत्तर दरवाजा का पास, वहाँ पे शीतला देवी है, शीतला देवी मंदिर है, मंदिर का सामने एक ही कुआं है, वो पूरा महीना 12 महीना तक बंद रहता है। स्नान पूर्णिमा का पूर्व दिन वो कुआं को ओपन किया जाता है, और स्नान पूर्णिमा का दिन उसी कुआं से 108 गगरा का जल निकलते हैं, निकल के भगवान को स्नान किया जाता है। और जगन्नाथ के लिए 35 गगरा, बलदेव के लिए कितना? 33, सुभद्रा के लिए 22, और सुदर्शन के लिए 18 गगरा जल में स्नान किया जाता है। मिलाओगे 35, 33 और 22 और 18 मिलाओगे तो 108 गगरा जल हो जाता है। उसमें स्नान करने का बाद भगवान को बुखार होता है। क्या होता है? बुखार। तब जगन्नाथ का दर्शन बंद हो जाता है। कब तक? नेत्र उत्सव तक, नेत्र उत्सव तक बंद हो जाता है, जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता है 15 दिन। तब चैतन्य महाप्रभु डेली जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, डेली 365 दिन उनका रिवाज है दर्शन करना है। तब चैतन्य महाप्रभु 15 दिन तक विरह भाव में प्रकट करते हुए उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से पश्चिम दिशा के तरफ चलते हैं। वो आता है मंदिर है अलारनाथ, कौन सा मंदिर? अलारनाथ। वहाँ पे 15 दिन तक यात्रा होता है, 15 दिन वहाँ पे जगन्नाथ का स्वरूप मतलब जो है वहाँ पे नारायण का रूप में दर्शन होता है। शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के भगवान नारायण का रूप में चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। तब वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाते हैं दर्शन करने के लिए 15 दिन। इसका बाद नेत्र उत्सव होता है, जिसी दिन गुंडीचा मार्जना होता है उसी दिन नेत्र उत्सव होता है। नेत्र उत्सव का दिन बहुत भीड़ होता है जगन्नाथ मंदिर का अंदर, जगन्नाथ मंदिर का अंदर बहुत भीड़ होता है, और उसी में तो कोई ना कोई धक्का मुखी खा के हरिबोल भी हो जाता है, जैसा रथ यात्रा में हरिबोल होता है, कोई ना कोई एक दो हरिबोल होते हैं, उसी में भी भीड़ भाड़ होता है। क्योंकि नेत्र उत्सव में क्या होता है, जगन्नाथपुरी में बहुत सारे भक्त है जो कि उन्हीं का भी रिवाज है डेली दर्शन करने जाना है जगन्नाथ मंदिर पे, डेली दर्शन करना जाना है। नेत्रोत्सव का दिन जब दर्शन खुलता है इमीडिएटली बहुत भीड़ हो जाता है, तब नेत्रोत्सव होने का बाद है दूसरा दिन द्वितीया, आषाढ़ की द्वितीया, तब उसी दिन जगन्नाथ रथ का ऊपर विराजमान होते हैं, रथ यात्रा उत्सव पालन किया जाता है। तब रथ यात्रा का टाइम पे ये क्यों रथ यात्रा होते हैं, क्योंकि 15 दिन तक भगवान अनंसर घर पे रहते हैं। अनंसर मतलब अन्नवसर, किसको दर्शन नहीं होता है, ओनली सेवक लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि सेवा करना पड़ता है। भगवान को जब बुखार होता है जड़ी बूटी लगता है, अभी आपको कभी भी बुखार होता है आपका जड़ी बूटी लगता है ना, उसी प्रकार, क्योंकि मैंने इधर तो स्नान पूर्णिमा का दिन में नहीं था, इधर कोई ना कोई बोला होगा स्नान पूर्णिमा का कथा, मैं स्नान पूर्णिमा का कथा के लिए मीरा रोड चला गया था, वहाँ पे स्नान पूर्णिमा का दिन से कथा चालू हुआ 16 तारीख तक, 9 तारीख से 16 तारीख तक 8 दिन वहाँ पे कमलोचन प्रभु फिक्स कर दिया, आप कभी आना तो यहाँ पे साल में एक बार कथा होगा जगन्नाथ का, और वहाँ पे लगभग 200 भक्त डेली सुनते थे, लेकिन वहाँ पे 3 बार कथा होता था। सुबह एक ही मंदिर है बाहिंदर, जहाँ पे पहले राधा गिरिधारी थे, वहाँ पे होता था सुबह 8 से 10, फिर शाम को मीरा रोड मंदिर पे होता था 7:30 से 9 बजे तक, और एक ही भक्त लोग को उत्साह होता था, गुजराती लोग सब डायमंड बिजनेस करने वाले, उनको दिन में टाइम नहीं होता है, रात में भी टाइम नहीं होता है, उन लोग को 9:30 बजे लेक्चर चालू होता है 11 बजे तक। तो ऐसे ही 3 बार कथा होता था पर डे, तो बहुत थकावट लगता था, लेकिन उन लोग बहुत उत्साह के साथ जगन्नाथ कथा सुने। तब स्नान पूर्णिमा जो है, स्नान पूर्णिमा का दिन से इतना दिन तक वह भगवान का दर्शन नहीं होता है, होने जब नहीं होता है तब स्वयं लक्ष्मी जी जगन्नाथ का सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं, क्योंकि 365 दिन से 15 दिन माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 350 दिन तक संसार का लोग सकाम कर्मी लोग आते हैं कुछ ना कुछ भगवान से मांगने के लिए, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, और भगवान कभी भी लक्ष्मी के साथ बात करना, लक्ष्मी के साथ अच्छा से बस उठ करना, मतलब खान पान करना, वो सब कुछ नहीं हो पाता है। तब इसीलिए कहते हैं 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लया तारा संगे लीला कैला निवृत्त बसिया ताहार समति लया भक्ते सुख दिते रथे चढ़ी बाहिर हैल बिहार करिते। 5-10 दिन मतलब 15 दिन तक महालक्ष्मी का सांग लीला करते हैं निवृत्त, उसी कमरे में कोई नहीं जाते हैं। फिर रथ यात्रा में जाने के लिए पत्नी का परमिशन लेना पड़ता है, लक्ष्मी का परमिशन लिए, इसलिए कहते हैं ताहार सम्मति लया भक्ते सुख दिते रथे चढ़ी बाहिर हैल बिहार करते। लक्ष्मी का परमिशन लेते हैं, मतलब मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि एक ही कमरा में बैठे बैठ के थोड़ा दूसरा हवा खाना चाहता हूँ, बाहर का क्लाइमेट में थोड़ा घूम के आना चाहता हूँ। तब लक्ष्मी जी बोले थोड़ी समय के लिए जाना है तो जा सकते हैं, बोल दिए जाने के लिए। तब लक्ष्मी का बात हो गया जाने के लिए। और यहाँ पे दूसरा घटना आता है, रथ यात्रा इसीलिए होता है क्योंकि जगन्नाथ का बहन कौन है, सुभद्रा जी। सुभद्रा जी का एक बार मन में विचार था थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाना, 15 दिन तक एक ही घर में बैठ के थोड़ा बाहर चल के आते हैं घूम फिर के, बाहर में बाहर का हवा बाहर का उपवन में थोड़ा जाना है। तब इसीलिए बहन का बात को सुन के दोनों भाई का साथ बहन निकल जाते हैं रथ का पर सवार होके, लेकिन लक्ष्मी जी का परमिशन मिल चुका है। लक्ष्मी जी तो बोले वो सोच रहे हैं थोड़ी दिन के अंदर आ जाएंगे, और कोई टाइम टेबल नहीं दिए इतना दिन के अंदर रिटर्न आऊँगा, जगन्नाथ का भी टाइम टेबल। अभी कभी भी पति को पत्नी को कभी नहीं बोलना चाहिए मैं इतना दिन के लिए जा रहा हूँ कि इतना दिन का अंदर वापस आऊँगा, कभी भी ये होता है सीक्रेट, ये बात है सीक्रेट ध्यान रखने का चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, और कहाँ जा रहा हूँ भी नहीं बोलना चाहिए। जगन्नाथ जी भी कभी नहीं बोले मैं वहाँ जा रहा हूँ, जगन्नाथ जा रहे कहाँ पे, सुंदरांचल जा रहे, सुंदरांचल मतलब वृंदावन जा रहा है, वृंदावन का प्रति कितने आसक्त है, लेकिन वृंदावन जा रहा है कभी नहीं बोला, नहीं बोल रहा है, लक्ष्मी जी को नहीं बताया मैं वृंदावन जा रहा हूँ, नहीं तो लक्ष्मी जी रोक देते थे, बोला नहीं। तब नीलांचल जो जगन्नाथ विराजमान होते हैं उसको नीलांचल कहते हैं, और जो गुंडीचा मंदिर है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुंदरांचल। जगन्नाथ मंदिर को द्वारिका कहा जाता है और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहा जाता है, ठीक है। तब इसी प्रकार तब लक्ष्मी को बोल के चले जाते हैं। तब लक्ष्मी जी देखती है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन हो गया, क्योंकि माताओं लोगों को क्या होता है, क्रोध बढ़ता है। बाई चांस पति को नहीं देखें तो क्रोध बढ़ता है ना, कहाँ गए, बढ़ता बढ़ता है। पहले अंदर में बढ़ेगा, हर व्यक्ति का ये क्रोध बढ़ता है, पहले अंदर में क्रोध आएगा, क्रोध जाते होता है, क्रोध जाते होने का बाद क्या होगा, फिर वो क्रोध आते आते कहाँ पे चालू होगा, मुख से चालू होगा, बोलना चालू होगा, कहाँ गए, घुसा वगैरह बोलने लगेगी। तब मुख से चलने के बाद फिर आँख लाल पड़ जाएगा, गर्म ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर क्रोध ऊपर जाते हैं आँख लाल हो जाएगा, आँख लाल होने का बाद आँख फड़केगा, आँख ऐसा ही होगा, फिर ऊपर सिर का ऊपर जाएगा, मन को ऊपर आएगा, मन का ऊपर क्रोध प्रवेश करने के बाद फिर नाक में आएगा, फिर नाक का बाद आने का बाद फिर नीचे आएगा, हाथ का ऊपर आएगा, फिर चलेगा। ये क्रोध का स्वभाव है जब भी कोई भी व्यक्ति का, और लक्ष्मी जी वही काम कर रहा है। अभी आप देखिए बहुत सारा लीला है, और ये लीला भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। मैं चैतन्य चरितामृत तो इतना तक नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा पास समय जिस प्रकार है। फिर और जब श्री जगन्नाथ और लक्ष्मी जी कैसा क्रोधित होते हैं, जब जगन्नाथ देव को घूमने का बहाना से बाहर गए, पांच दिन हो गया, एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांच दिन, आप हिसाब देखिए। 25 तारीख को रथ यात्रा हुआ था, कितना तारीख सबकी याद है, 25 तारीख को रथ यात्रा हुआ था, 25 तारीख से 29 तारीख तक आज तक गिनिए, 25, 26, 27, 28 कितना हुआ, हो गया पाँच दिन। इसीलिए पांचवा तिथि में ये पालन किया जाता है। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर से लक्ष्मी का जो सेवक है और लक्ष्मी जी को लेके, लक्ष्मी को सारा श्रृंगार किया जाएगा, और श्रृंगार करके लक्ष्मी को लेकर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, गुंडीचा मंदिर तक लेकर जाएंगे, और फिर झगड़ा होगा। तब लक्ष्मी जी सोचने लगे कि प्रभु कहाँ चले गए, तो शीघ्र ही आने के लिए वचन दिया तो दिया था, लेकिन अभी तक भी रिटर्न नहीं आए, इतने दिनों से लौटे नहीं। लक्ष्मी जी जगन्नाथ का विलंब रूपी उपेक्षा को सहन करने में असमर्थ हो गए, तथा क्रोध होकर उन्होंने अपने सभी दासियों आज्ञा दी कि वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र का सहित तैयार हो जाएं। तब वे सेनाध्यक्ष के सामने समान अपने पति पर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हो गए। वे जगन्नाथ को ढूंढते ढूंढते गुंडीचा मंदिर तक पहुंच गए, और वहां जगन्नाथ को हेरती अर्थात ढूंढती है, इसीलिए उत्कलवासी मतलब जगन्नाथ उड़ीसा क्षेत्र को उत्कलवासी कहा जाता है। उत्कल है ध्रुव महाराज का एक पुत्र का नाम, उसी पुत्र का नाम का अनुसार उड़ीसा का क्षेत्र का नाम क्या पड़ता है, उत्कल। तब उत्कलवासी इसी हेरती का शब्द को हेरा पंचमी लगा दिया, उड़िया भाषा में कहते हेरा पंचमी, इसलिए पंचमी तिथि में लक्ष्मी जी ढूंढने गई थी, इसलिए उसी तिथि में पालन किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु हेरा पंचमी के दर्शन करने के लिए अभिलाष किए थे। श्रीमान महाप्रभु नीलांचल को द्वारिका और गुंडीचा मंदिर को सुंदरांचल व वृंदावन कहकर जगतवासियों को द्वारिका और वृंदावन का अंतर समझाना चाहते हैं। और महाप्रभु पूछते हैं काशी मिश्र को कहे, मैं अपने भक्तों के साथ हेरा पंचमी का उत्सव देखना चाहता हूँ। काशी मिश्र ने श्रीमान महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा पत्रपुत्र के समक्ष जाते हैं, और समक्ष में जाके कहते हैं, काशी मिश्र ने राजा से कहा, महालक्ष्मी जी को सुंदर सुंदर स्वर्ण आभूषण में सुसज्जित कीजिए, इतना भव्य उत्सव करो कि सभी उनका वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं, और सोचें कि इस प्रकार का उत्सव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा यह सुनकर अति प्रसन्न हो गए कि उन्हें श्रीमान महाप्रभु की सेवा को सुनहरा अवसर मिल गया, और उन्होंने काशी मिश्र से कहा, कि राजकोष में जितने राजकोष से जो चाहे ले सकते हैं। हेरा पंचमी का दिन काशी मिश्र ने सैकड़ों भक्तों सुंदर सुंदर श्रृंगार करके इस लीला के लिए तैयार किया। श्रीमन महाप्रभु प्रातःकाल अपने भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए गए और फिर हेरा पंचमी का उत्सव देखने के लिए सभी भक्तों को लेकर जगन्नाथ मंदिर आ गए। गुंडीचा मंदिर गए थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन फिर वापस आ गए यहाँ देखने के लिए। काशी मिश्र ने उनका बहुत आदर सत्कार करके सिंहों द्वार के पास एक सुंदर स्थान पर चैतन्य महाप्रभु को बैठा दिया। जैसा कि पूर्व अध्याय में वर्णन हुआ है चैतन्य चरितामृत में, ब्रजवासी और द्वारिकावासी दोनों ही कृष्ण के बहुत प्रेम करते हैं, परंतु श्री कृष्ण केवल ब्रजवासियों को प्रेम में प्रेम के ही वशीभूत होते। इसीलिए हेरा पंचमी का दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर कुछ प्रश्न करके ब्रजवासियों को प्रेम की महिमा जगत में स्थापित करना चाहते। ब्रजवासियों का प्रेम कितना गूढ़ है। और चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के संवाद में कहते हैं, यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारिका विहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वत्सर मध्ये है एक बार वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। यदि भी एक बार रथ यात्रा होता है, साल में कितना बार होता है, लेकिन हमारा कितने बार हो रहा है, इस्कन में कितना बार हो रहा है, 365 दिन रथ यात्रा हो रहा है। ये शिला प्रभुपाद की कृपा से। शिला प्रभुपाद पहले जाने का पहले, विदेश जाने का पहले जगन्नाथ पहले चले गए थे, जानते हैं प्रभुपाद लाइफ हिस्ट्री प्रभुपाद लीलामृत में पढ़िए। प्रभुपाद विदेश जाने का पहले जगन्नाथ विदेश में पहुंच गए थे। और वह एक प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है, प्रभुपाद जब लंदन में रथ यात्रा हो रहा था तब प्रभुपाद रथ का ऊपर कभी नहीं चढ़े। प्रभुपाद ने प्रभुपाद का शिष्य लोग को सभी बुलाए, प्रभुपाद के लिए सिंहासन भी लगाए, आसन लगाए रथ में बैठने के लिए, लेकिन प्रभुपाद नहीं बैठे। प्रभुपाद क्या कहे, प्रभुपाद कहे मैं सिर में नाचूंगा और गाऊंगा। क्या करूंगा, नाचना और गाना है मेरा कृत सेवा है, और कोई सेवा नहीं। मैं इतने बड़ा सेवक नहीं हूं जो कि मैं रथ में बैठ जाऊं। रथ बना हुआ किसके लिए, सिर्फ किसके लिए, जगन्नाथ के लिए। स्वयं सिर्फ जगन्नाथ का रथ के ऊपर मैं सवार नहीं हो सकता हूं, बोले जगन्नाथ बैठेंगे। ये प्रभुपाद लाइफ हिस्ट्री में पूरा डिटेल से लिखा हुआ लंदन रथ यात्रा में। और प्रभुपाद बारंबार, प्रभुपाद इतनी उम्र होने का नाते रथ जहां से निकला और जहां तक पहुंचा वहां तक कभी भी बैठे नहीं किसी भी जगह पे, और थके भी नहीं। 18 साल की बच्चा जैसा नाचता है, इसलिए प्रभुपाद ऐसे नाचते थे। अभी हम लोग को जाते हैं तो हमें रथ का पहले हमारा मन में आता है हमें रथ का ऊपर बैठ जाए। बहुत सारे भक्त लोग को धक्कामुक्की होते हैं रथ में बैठने के लिए। ये शिला प्रभुपाद से शिक्षा है, रथ का सामने हमें चलना चाहिए, रथ का आगे चले नहीं तो पीछे चले, चलना चाहिए। और रथ में रथ का सामने बारंबार शिला प्रभुपाद बारंबार बोलते थे जय जगन्नाथ, प्रभुपाद ये भी बोलते थे, और बीच बीच में हरि बोल नहीं तो जय जगन्नाथ, ये दो ध्वनि शिला प्रभुपाद का मुख से उच्चारित होता था। तब साल में एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है, इसलिए कहते हैं यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारिका विहार, द्वारिका में रहते हैं जगन्नाथ नीलांचलपुरी में रहते हैं, लेकिन सहज प्रकट करे परम उदार, और उनका थोड़ा उदार होचा क्या होता है, वृंदावन देखने के लिए वृंदावन जाने के लिए इच्छा तो होता है, इसलिए साल में एक बार वृंदावन चला जाते हैं। वृंदावन समय ही उपगन गण ताहा देखी बारे उत्कंठिय है अमना। और वृंदावन जाने के लिए जाने का रास्ता में क्या पड़ेगा, उपवन वो भी देखने मिलेगा, और बाहर का हवा खाने के लिए मिलेगा, बहुत सारा भक्त का साथ मिलना होगा। इसलिए जगन्नाथ का मन में ये विचार आ जाता है तब हमें एक बार वृंदावन जाना है। और जो जाते हैं वृंदावन जाते हैं तब कितना दिन वहाँ पे रहते हैं, जो गुंडीचा मंदिर है गुंडीचा मंदिर का अंदर जगन्नाथ जो विराजमान थे, जो मंडप है जगन्नाथ मंदिर पे 5 मंडप है, रत्न मंडप, नाट मंडप, भोग मंडप, स्नान मंडप, मुक्ति मंडप, ये 5 मंडप है जगन्नाथ मंदिर पे। लेकिन गुंडीचा मंदिर पे एक मंडप है, वो मंडप का नाम है आड़प मंडप, आडप मंडप, ये ध्यान रखिए उड़िया भाषा है, इसका हिंदी कुछ मेंशन नहीं हो सकता है, आडप मंडप। वो मंडप में जगन्नाथ विराजमान होते हैं। बाहिर हईते करे रथ यात्रा छल सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलांचल। जगन्नाथ के बाह्य रूप में रथ पर चढ़कर उपवन में घूमने जाने का छल करते हैं। जगन्नाथ छल से नीलांचल द्वारिका को छोड़कर सुंदरांचल जाने चले जाते हैं। नाना पुष्प उद्याने तथा खेले रात्रि दिने लक्ष्मी देवी र संगे नाही लय की कारणे। भगवान वहाँ के उपवन में दिन रात क्रीड़ा विहार करते हैं, तब फिर भी सौभाग्य देवी लक्ष्मी को अपने साथ क्यों नहीं लाए। साथ में कौन है? अपना भाई, और कौन है? बहन है बस। और लक्ष्मी को छोड़कर आगे लक्ष्मी के साथ नहीं ले रहा है। इसीलिए कभी कभी इसे शिक्षा मिलता है, कभी कभी पत्नी को छोड़कर जाना चाहिए, सही। लेकिन फिर भी शास्त्र में बताते हैं कोई तीर्थ स्थान जाना, किसी मंदिर पे जाना, कभी भक्ति के लिए जाना है तो पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहिए, ये भी शिक्षा है। तब यहाँ पे कहते हैं रासलीला में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, इसलिए गुंडीचा मंदिर का अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं की। लक्ष्मी यहाँ से सजा बजा करके सारा ड्रेस अलंकार लगा कर गई, लेकिन गुंडीचा मंदिर तक गया, गुंडीचा मंदिर का गेट तक गया और वहाँ से वापस आए। आगे लिखा है स्वरूप कहे सुना प्रभु कारण यहाँ वृंदावन क्रीड़ते लक्ष्मी रे नाही अधिकार। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु कह रहे प्रभु इसका कारण यह है कि सौभाग्य देवी लक्ष्मी जी का वृंदावन के लीला में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। क्या कारण है? वृंदावन लीलाए कृष्ण सहाय गोपीगणा गोपीगणा बिना कृष्ण हरिते नारे मान। वृंदावन के मधुर लीलाओं में गोपियां ही कृष्णों की सहायक है, क्योंकि गोपियों के बिना अन्य कोई भी कृष्ण के मन का हरण नहीं कर सकता। द्वारिका में कृष्ण की लक्ष्मी स्वरूपा 16108 रानियां तथा सत्यभामा और रुक्मिणी भी आदि 8 पाटरणियां है। इन 8 पाटरणियां से जब किसी एक की वृंदावन में कृष्ण की लीला में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, तब फिर 16108 रानियां तो कहना ही क्या। वृंदावन में गोपियों के द्वारा परक्या भाव से कृष्ण की सेवा की जाती है और द्वारिका में महर्षियों में कृष्ण के प्रति शोकिया भाव से सेवा किया जाता है। प्रेम के दो पक्ष होता है, एक ही मिलन और एक ही है विरह। विरह मिलन की उत्कंठा को बढ़ाकर मिलन की पुष्टि करता है। जहाँ सदा मिलन ही मिलन है वहाँ प्रेम में भाव की लहरियाँ नहीं उठती। द्वारिका में महिषियाँ कृष्ण की विवाहिता पत्नी है और सामाजिक दृष्टि से उनके कृष्ण के मिलन में कोई बाधा नहीं है। वे जब चाहे कृष्ण के मिल सकती है, इसलिए उनके प्रेम में नित्य नवीनता का अभाव है। यदि प्रेम का कोई कारण होता है तब वे उस कारण के टूटने से संबद्ध प्रेम विवाह पर आधारित है, परंतु गोपियां का कृष्ण से प्रेम किसी भी सामाजिक संबंधी की अपेक्षा नहीं रखता है। उनका विवाह तो अन्य गोपों से हुआ, परंतु कृष्ण से तो उसका जन्मजात प्रेम है। किसका साथ? गोपियों का साथ। दूसरा अर्थ में कहते हैं एक बार रासलीला की महिमा लक्ष्मी जी सुन करके और रासलीला में प्रवेश करने के लिए लालसा की थी, परंतु लक्ष्मी जी तो वृंदावन में ही प्रवेश का योग्यता नहीं है, इसलिए उन्होंने जमुना के पूर्व तट पर बेलवन है जहाँ पे 1000 वर्ष तक तपस्या की। तब कृष्ण ने आकर उनसे पूछा, लक्ष्मी जी से पूछा, तुम यह कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा मैं आपसे वर प्राप्त करके रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूँ। कृष्ण ने पूछा क्यों संभव नहीं है? ये तो संभव नहीं है। कृष्ण ने कहा रास में प्रवेश करने के लिए आपको गोपी का शरीर, गोपी का देह और गोपी अभिमान होना आवश्यक है। इस जन्म के पश्चात तुम्हें वृंदावन के रास लीला में प्रवेश कर सकती हो। फिर जब तुम नित्य सिद्ध गोपियों का अनुगत्य करके शुद्ध गोपी अभिमान में नित्य होंगी तो ही तुम रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं। जिन ब्रज गोपियों का संतान है वे भी रास में प्रवेश नहीं पा सकती। रासलीला में वही गोपियां प्रवेश कर सकती है जिनका अपने पतियों का कोई संबंध नहीं है। फिर तुम कैसे प्रवेश पा सकते हो? इसके लिए तुम्हें अपने पति नारायण के प्रति प्रेम भाव और अपने में ब्राह्मणी होने का अभिमान का परित्याग करना होगा। तुम्हें अपने गोप पति को धोखा देकर परिक्रिया का अवलंबन करना होगा। इस प्रकार तुम गोपी भाव में स्थित होकर रासलीला में प्रवेश कर सकते हो। लक्ष्मी देवी ने विरोध करते हुए कहा मैं अपने पति नारायण का परित्याग कैसे कर सकती हूँ? मैं नारायण को छोड़कर और अपने सतीत्व को त्याग कर कैसे गोप से विवाह नहीं कर सकते हूँ? तब कृष्ण ने कहा जब तक तुम ये सब करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक तुम्हें रासलीला में प्रवेश करने के लिए प्रतिज्ञा करनी होगी। इसलिए लक्ष्मी जी आज तक बेलबन में तपस्या कर रही है और वे अभी तक भी इसकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकी है। सभी लोग इसी गोप प्रेम की अभिलाषा कर सकती है किंतु वह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी भी आदि भी इसे प्राप्त नहीं कर सके हैं। फिर दूसरे लोग की बात क्या कहा जा सकता है? इसीलिए लक्ष्मी जी बेल वन में बैठ के तपस्या कर रहे हैं और रासलीला में भाग लेने के लिए। इस प्रकार की बहुत सारा चर्चा है चैतन्य चरितामृत में। और फिर लक्ष्मी जी और क्रोधित होते हैं। क्रोधित होते 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 लास्ट में क्या करते हैं? सारा दास दासियाँ को साथ में लेकर जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं। निकल के गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं। गुंडीचा मंदिर पे चार तरफ परिक्रमा लगा देता है, चार तरफ ढूंढ लेता है। देखते हैं जगन्नाथ को नहीं पाए। जगन्नाथ को जब नहीं पाते हैं और क्रोध जब बढ़ जाता है तब क्या करते हैं? तब जगन्नाथ जिस रात में आते हैं तब उसी रात को अपना घोसा में और हाथ में लाठी है और लाठी में वो रात को तोड़ देती है और रात को तोड़ के फिर सीधा वापस जाती है। वापस जाता है तो दूसरा रास्ता से जाती है। जो रास्ता में लक्ष्मी जी आई थी गुंडीचा मंदिर तक और वापस जाने का बाद दूसरा रास्ता में जाते हैं वो रास्ता का नाम है हेरा गौरी, हेरा सौरी, ऐसा कुछ नाम है। मतलब उसी गांव का, मतलब उसी शाही का नाम है, पुरी में है। तब वो रास्ता में वापस जाके फिर मंदिर का अंदर चला जाता है, जगन्नाथ मंदिर का अंदर चला जाता है, मतलब अपना घर चला जाता है। फिर जाने का बाद जब जगन्नाथ का वापस यात्रा होता है, उल्टा रथ होता है, उल्टा रथ है 3 तारीख को। किस दिन होगा उल्टा रथ? होगा 3 तारीख, अभी आने वाला 3 तारीख उल्टा वापस यात्रा। तब लक्ष्मी का क्रोध अभी तक समाप्त नहीं होती है। यहाँ पे रथ को तोड़ दिया, आगे अपना घर पे वापस आ गई, फिर भी घोसा तब तक कमी नहीं हो रहा है। तब क्या करती है? घोसा में तो रहती है। तब जब भगवान वापस यात्रा में आते हैं, वापस यात्रा को उल्टा रथ कहते हैं, दूसरा उड़िया भाषा में कहते हैं बाहुड़ा यात्रा। तब भगवान वापस आते हैं, वापस आके जगन्नाथ मंदिर का सामने 3 रथ फिर रहता है। 3 रथ रहने का बाद उसी दिन जगन्नाथ अपना सिंहासन को नहीं जाते हैं क्योंकि वापस में रथ रात हो जाता है, वापस आते आते हैं। तब जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते नहीं। दूसरा दिन होता है एकादशी, 4 तारीख को एकादशी है। उसी दिन क्या होता है? भगवान जगन्नाथ स्वर्णों बेश होते हैं, जगन्नाथ का 32 वेष होते हैं, 32 वेष से ये स्वर्ण वेष एक ही वेष है, और जगन्नाथ जो स्वर्ण वेष है ये साल में 4 बार होते हैं, रथ का ऊपर एक बार होते हैं, ये रथ का ऊपर स्वर्ण वेष में सारा जगत का लोक को दर्शन देते हैं। और स्वर्ण वेष होगा, स्वर्ण वेष होने का नाते उसी दिन भी जगन्नाथ अपना घर पे नहीं जाते हैं, मंदिर पे नहीं जाते हैं, रत्न मंडप पर नहीं जाते, उसी दिन भी नहीं जाएंगे। फिर तिथि देखा जाता है, पंजिका है जगन्नाथ का, जो पंजिका है उसका नाम है मादला पंजी, वो पंजिका देखा जाता है, तिथि बार सही है कि नहीं है वो भी देखा जाता है। इसी प्रकार आज कौन सा बार है, आज कौन सा बार है, लक्ष्मी का बार है ना, और लक्ष्मी यहाँ पे क्रोध होकर जा रहा है, आज का दिन में लक्ष्मी क्रोध होकर गुंडीचा मंदिर जाएगी। फिर तब वापस दिन देखा जाता है, तिथि बार देखा जाता है जगन्नाथ कौन सा दिन मंदिर के अंदर जाएंगे। बाई चांस गुरुवार पड़ेगा तब नहीं जाएंगे, एकादशी का दिन में तो जाएंगे ही नहीं। इसी प्रकार कोई तिथि देखा जाता है नीलाद्रि विजय, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए उसको कहते हैं नीलाद्रि विजय, नीलाद्रि भगवान जहाँ पे विराजमान होते हैं हाँ वहाँ पे नीलाद्रि विजय करने के लिए वो तिथि बार सब देखा जाता है। देखने के बाद फिर जगन्नाथ जाएंगे, और जिस दिन नीलाद्रि विजय होगा उसी दिन क्या होगा, पहले तो सुदर्शन चला जाएंगे, इसका बाद बलदेव चला जाएंगे, अंदर चला जाएंगे, और सुभद्रा भी चला जाएंगे, रथ से उतर के मंदिर के अंदर चला जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ रथ से नीचे उतरेंगे, उतरते हुए जो पहला दरवाजा है, जो दरवाजा कौन सा दरवाजा है, पहला दरवाजा सिंह द्वार का दरवाजा क्या करेगी, लक्ष्मी जी बंद कर देगी जगन्नाथ के लिए, बलदेव के लिए बंद नहीं किए, सुभद्रा के लिए नहीं की, और सुदर्शन के लिए नहीं की, लेकिन जगन्नाथ के लिए दरवाजा को बंद कर देगी। इतने क्रोध है कि फिर दरवाजा बंद कर देती है, तब बंद कर दी है। तब जगन्नाथ का सेवक और लक्ष्मी का सेवक दोनों झगड़ा होता है, वार्तालाप होता है, झगड़ा होता है हाँ, बात बात का ऊपर झगड़ा होगा हाँ, इतना दिन तक लक्ष्मी जी का साइड में आप लोग कितने इतने दिन तक कहाँ गए थे हाँ, आपके लिए दरवाजा बंद है। तब जगन्नाथ का तरफ से क्या जाता है, फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपना पत्नी को थोड़ा शांत करने के लिए, क्रोध को थोड़ा शांत करने के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्वीट खिलाना चाहिए, क्योंकि मुख से जब कड़वा आवाज़ आता है ना तब मीठा बोलने के लिए मीठा खाना पड़ता है, मिर्ची खाओगे तो कड़वा, और क्या है, कड़वा पता खाओगे तो कड़वा निकलेगा, इसीलिए वो चीज़ नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ है जब उन्होंने क्रोधित होता है, जब लक्ष्मी इतने क्रोध है उसको शांत करने के लिए स्वयं जगन्नाथ उसी दिन उनको रसगुल्ला खिलाती है, जगन्नाथ स्वयं किसको खिलाती है, लक्ष्मी जी को खिलाती है। तब लक्ष्मी जी थोड़ा शांत होता है, फिर क्या करती है, दरवाजा खोल देती है। कभी कभी भी पत्नी कभी गुस्सा होता है, इसलिए आप लोग का सेवा है कम से कम स्वीट खिला देने का, फिर पत्नी शांत हो जाएगा। लेकिन अभी का टाइम में तो ऐसा नहीं होता है, कम से कम क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने से शांत हो सकता है, ये तो हमारा एक ही मंत्र से सब कुछ होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो रसगुल्ला खिलाने का विधि है ये जगन्नाथ का वापस यात्रा का बाद होता है, लेकिन मैं वापस यात्रा का कथा इधर नहीं कह रहा हूँ, मैं उड़ीसा जा रहा हूँ तब वहाँ कहने के लिए है। तब इसीलिए आज एक भक्त को काल एक भक्त को बताया, मैं बोला कम से कम अभी लक्ष्मी जी का विचार चल रहा है और कथा भी लक्ष्मी जी का ऊपर होगा, इसलिए आपका तरफ से थोड़ा रसगुल्ला खिला दीजिए। तब प्रभु जी ने का तरफ से रसगुल्ला भी भंडारा आ गया। जगन्नाथपुरी में होता है तो कम से कम जितने भी लोग आते हैं, जितने दर्शन करने वाले आते हैं उसी दिन वो तिथि में, तब सभी को रसगुल्ला खिलाते हैं। बहुत बड़ा श्री रसगुल्ला ही रसगुल्ला, जहाँ जाओगे रसगुल्ला ही, सभी का मुख में रसगुल्ला ही आता है। ये बहुत बड़ा पर्व पालन किया जाता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े बड़े पर्व पालन किया जाता है। जगन्नाथ का रीति रिवाज अनुसार, विधि विधान का अनुसार सारा पर्व। और रथ का, रथ जो जिस दिन वापस आएगा, वापस आने के बाद जिस दिन भगवान स्वर्ण में से होंगे, उसी दिन रात को क्या होगा मालूम है? एक ही पाना बना जाता है, पाना मतलब जूस। क्यों? जगन्नाथ का सामने रखा जाएगा तीनों मटका, बड़े बड़े मटका, और रखा जाएगा उसमें जूस। जूस मतलब अलग अलग सब डालते हैं, नारियल, केला, आम, बहुत सारा आइटम डाल के जूस बन, और भगवान का सामने रहेगा और इसको तोड़ा जाएगा। क्योंकि रथ में, रथ का नीचे कोई अतृप्त आत्मा, अतृप्त आत्मा समझ रहे हैं, जिसका भगवान का, भगवान को कभी हमारा नजर में वो दिखाई नहीं देंगे, जो अतृप्त आत्मा, हम कहने का अर्थ है भूत प्रेत। जिस प्रकार जिसको भगवान का प्रति भक्ति है, लेकिन कौन सा जन्म में कौन सा कर्म कर लिया और भूत प्रेत जोनी में आ चुका है, लेकिन उनका इच्छा होता है भगवान का सेवा में जोड़ने के लिए, तो फिर क्या होता है, वो अतृप्त आत्मा भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए, तब वो जूस को तोड़ा जाता है। जगन्नाथ का सामने भोग लगा के वो तोड़ा जाता है, रथ का नीचे वो गिर पड़ता है। बाई चांस वो अतृप्त आत्मा वो प्रसाद को प्राप्त करके किसी प्रकार उनका सदगति हो जाए, ये भी विधि होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार विधि का नियम का अनुसार किया जाता है जगन्नाथपुरी में। तो उसी प्रकार ये सब लीला होता है जगन्नाथपुरी में। साल भर के रहेंगे, 365 दिन रहेंगे, तब सारा लीला को दर्शन कर सकते हैं, सभी लीला को आप दर्शन से कर सकते हैं। हम तो जाते हो तो जगन्नाथपुरी में दर्शन किया कि नहीं किया, थोड़ा राउंड लगा के एक दिन गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु 24 घंटा मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया, करने के बाद गरुड़ खंभा के पीछे खड़ा होके दर्शन करते रहे, आग का पलक कभी गिरता नहीं। भगवान को दर्शन करने का तरीका और भगवान को दर्शन करने का शिक्षा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा से शिक्षा करो, कैसा दर्शन करना है। हमें 2 मिनट भी मंदिर आते हैं, माथा झुकाते कि नहीं झुकाते, बस भागते हैं, काम है, घर पे काम है, चलते हैं। भगवान को दर्शन करने के लिए पूरा ध्यान पूर्वक चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में दर्शन करते हैं, और विरह हो जाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं लगा, जिस दिन नेत्र उत्सव हुआ था, चैतन्य महाप्रभु गरुड़ खंभा का पीछे खड़ा होकर दर्शन कर रहा है, और एक माता आई और चैतन्य महाप्रभु का कांध में चढ़ गया भगवान को दर्शन करने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु कभी कहाँ से उसको हटाया नहीं, स्वरूप दामोदर साथ में, गोविंद साथ में थे, उनको बोल रहे हैं हट जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, उनको भगवान को दर्शन करना है, उनका इतने उत्साह है। चैतन्य महाप्रभु का कांध में चढ़ गए दर्शन करने के लिए। इसलिए हमको जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का धारा का अनुसार, चैतन्य महाप्रभु का भाव का अनुसार, इसी प्रकार हमें दर्शन करने के लिए भाव लेकर जाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु को भाव को देख के, और उनका अंदर जो गर्मपन था, वही गर्मपन से पत्थर पिघल गया। एक ही है आलारनाथ में वो पत्थर पड़ा है, और एक ही मंदिर का अंदर जहाँ पे गरुड़ खंभा का पीछे खड़ा होकर चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए थे, और राइट हैंड का, दाएं हाथ का 3 अंगुली का निशान है, वो पत्थर पिघला हुआ पत्थर है, निशान अभी भी है। चैतन्य महाप्रभु का भाव में वो पिघल गया, इतने महाप्रभु का अंदर इतने भाव आता है, गरम भाव मतलब गरम आ चुका था, पत्थर भी पिघल गया। हम तो सुबह से शाम तक हमें इतने मृदंग पिट रहे हैं, हमारा हृदय नहीं पिघल रहा है, पिघल रहे सुबह से शाम तक हमें इतने मृदंग पिट रहा है, करतला पिट रहा है, झम झम करके पिट रहा है, हमारा हृदय कितने साल बीत भी गया है, पिघल नहीं। कब वो पिघलेगा? हो सकता है कोई भक्त का कृपा हो जाए, हो सकता है हरि नाम करते करते पिघल जाए, अभी नहीं पिघल रहे, हमारा हृदय संपूर्ण पत्थर पलट चुका है। और चैतन्य महाप्रभु भाव में एक पत्थर को पिघल दिए, और हम हमारा हृदय को नहीं पिघल पा रहा है। किस प्रकार हमें भक्ति करना है, और वृंदावन धाम है, इसलिए सभी का कर्तव्य है सभी भक्त को कर्तव्य है जितना भी सुना, जितना भी आपको जानकारी मिला और जितना भी आप पढ़ाई किया, जितना भी साधु संत लोक, महात्मा लोक और भक्त लोक और महाराज लोक से सुना है, जितने भी आप प्रभुपाद का किताब से पढ़ा है, इतने ही आप लोग का सेवा है। सभी को बताना चाहिए, सभी को बताना चाहिए। आप कभी भी, आपका हाथ में समय है, सिर्फ आप कहाँ भी नहीं जाइए, सिर्फ ये वृंदावन मंदिर का अंदर, इसी वृंदावन का मंदिर का अंदर डेली गिनती नहीं कर पाओगे, 1,000 से 1,500 2,000 लोग डेली आते हैं, नया लोग। हमें इतने ही उनको बताएं प्रभुपाद का बारे में, कुछ नहीं बताने का। कृष्ण का बारे में उनको थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा ही होगा, प्रभुपाद का बारे में बताइए। इतने ही बताने के बाद उनका हृदय में जरूर, क्यों शुद्ध भक्त का बारे में हमें जब बताते हैं, उनका अंदर भक्ति जागृत हो जाता है, ऑटोमेटिक भक्ति क्रिएट होगा। ये सभी का कर्तव्य है। ऐसा नहीं हमें बैठ गए, हमको माला तो मिल गया, हमें अपना माला कर रहा है, लेकिन हम बताएं तब जाके प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद को प्रसन्न करना है तब हमें प्रभुपाद का वाणी को आगे बढ़ाना है, तब प्रभुपाद खुशी होंगे। प्रभुपाद खुशी होंगे क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण ने सैंक्शन करके भेजा है। ऐसा मत सोचिए हमारा सामने प्रभुपाद जी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। प्रभुपाद जी स्वयं बैठे हैं, प्रभुपाद जी किताब में है, प्रभुपाद ने किताब दिया है, इसलिए किताब को पढ़ें और किताब को बांटें और दूसरा व्यक्ति को बताएं। जब भी आपको समय है, हमारा ऊपर में दो म्यूजियम, मतलब एक ही साइड में भगवान का नाम करने के लिए और एक ही साइड में म्यूजियम है। जब भी समय है आप लोग का पास, जरूर आ जाए। जब भी समय, आधा घंटा क्यों नहीं, एक घंटा क्यों नहीं, इसमें सेवा में दीजिए। हर दिन ही नया लोग हमारे इधर, बहुत सारे भक्त लोग बैठे हैं, सेवा करते हैं, उनको पूछिए हर दिन। कोई शहर पे इस्कन है, वो शहर में उसी शहर का लोग आएंगे, सही है कि नहीं? जैसा मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे में उसी शहर का लोग, इतना ही। लेकिन वृंदावन में बोलिए सारा विश्व का लोग, सारा विश्व का लोग आ रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है सभी को, क्योंकि सभी को माला देके माला माल बनाना है, सभी को माला देके माला माल बनाना है। इसलिए सभी क्या करते हैं, भगवान का नाम जप कराने के लिए उनको शिक्षा दें। जय जगन्नाथ।